نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پچھلے ہی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اور یہ انشاءاللہ جب اسی کے ساتھ یہ حصہ جڑے گا بیچ کے خطبے کو نکال کے. تو ہم دیکھ رہے تھے غسل وضو اور تیمم کے مسائل. اگلی بات جو ہم نے اس چیپٹر سے سیکھی وہ کیا ہے کہ موزوں پر موزے یعنی ساکس جو ہیں اس پر مسح کر کے کرنا, اس کے بارے میں کیا سیکھا ہم نے. پہلی بات یہ ہے کہ وضو کر کے اگر ساکس پہنے تو سفر کی حالت میں 3 دن تک اور حضر یعنی گھر میں رہتے ہوئے 1 پورا دن یعنی 5 نمازیں مسح کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں. طریقہ کار کیا ہوگا کہ وضو کیجئے جیسے وضو کرتے ہیں, پھر اس سے پہلے کہ وضو ٹوٹے, وضو ٹوٹنے سے پہلے جرابیں پہن لیں. تو اس کے بعد جب ہر نماز کا اگلی نماز کا وقت آئے گا اور آپ وضو کریں گے تو جرابیں اتارنے کی ضرورت نہیں, ہاتھ کو پانی سے گیلا کر کے جھاڑ کے جیسے مسح کیا تھا ویسے ہی, اور پاؤں کے اوپر کے حصے پہ یہ جیسے اوپر کی چھت جو ہوتی ہے اس پہ ہاتھ سے ایک دفعہ پھیر دیا جائے گا, صرف ایک دفعہ, پورا اوپر نیچے کچھ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر دین میں عقل کا دخل ہوتا تو پاؤں کا جو مسا ہے وہ نیچے سے کیا جاتا. یعنی عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ تھوڑی بہت مٹی کو تنکے دھاگے بال پاؤں کے نیچے لگیں گے, نیچے نہیں کرتے, اوپر کرتے ہیں اور ایک دفعہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اگلی چیز ہم نے اسے سیکھی کہ جب تک انسان جرابیں اتارتا نہیں ہے اس وقت تک یہ مسا کی مدت ہے. جو ہی آپ نے ساکس اتار دی پھر اس کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. پھر اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ اگر چھوٹی موٹی کوئی سوراخ ہیں, کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو ایوائڈ کیا جائے گا, کیونکہ صحابہ کرام کی جو غربت تھی اس سے یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے ساکس میں کوئی بھی سوراخ نہیں ہوتا ہوگا. پھر اگلی بات اس میں ہم نے یہ سیکھی اس چیپٹر میں کہ وہ جراب جس کو پہننے سے لگے کہ کچھ پہنا ہوا ہے, موٹی ہے پتلی ہے اس اوکے, لیکن کچھ فیلنگز آئیں. آج کے دور میں بالکل ایسی ساکس بھی ہیں جو بالکل جھلی کی طرح ہیں, اسٹاکنگ ٹائپ کی, کہ ایون جس سے اسکن بھی دکھتی ہے, تو وہ پھر ایک اس سے الگ ہے. اس کے علاوہ جو عام پہننے کی آرام کی جو جرابیں ہوتی ہیں اس کے اوپر مسا جو ہے وہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, دیکھیے کہ دین کی اصل کو اصل سمجھ لیں گے نا, آج کے دور میں کئی ایسے کپڑے ایجاد ہو چکے ہیں جو پہلے دور میں نہیں تھے. سچ ہے نا, یعنی جتنا سنتھیٹک کپڑا ہم پہنتے ہیں, پولیسٹر, یہ جو ہمارے آرٹیفیشیل کپڑے ہوتے ہیں, شفون, جارجٹ, ربڑ کے, پلاسٹک کے, پہلے تو نہیں تھے, پہلے تو صرف کاٹن تھی نا. تو اب وہ حکم بدل گیا نا, تو اب کوئی یہ کہے کہ پہلے ہمیں یہ حکم دکھایا جائے کہ پولیسٹر کے کپڑے پہننے بھی جائز ہیں کہ نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں تو یہ نہیں ہوتے تھے. جہاز اللہ کے نبی کے دور میں نہیں ہوتا تھا, تو کوئی پوچھے کہ جہاز میں بیٹھنا جائز بھی ہے کہ نہیں جائز, ہمیں اس کی کوئی دلیل بتائیں, تو سمجھ سینس نہیں بنتی نا. یہ ہمارے ہاں یہ معروف ہے مسئلہ کہ چمڑے کی جرابوں میں مسا ہوتا ہے ورنہ نہیں. تو آپ ذرا سوچئے کہ کیا گرمی کے ملکوں میں یا ہمارے ہی اپنے کلچر میں دیکھیں, شاید کبھی کسی نے جرابیں چمڑے کی دیکھی بھی نہیں ہوگی, الا یہ کہ ان ملکوں میں, ہو سکتا ہے آپ کے اس ملک میں تو ہوں کیونکہ یہاں سردی بہت ہوتی ہے, لیکن پاکستان انڈیا میں تو کبھی کسی کو چمڑے کی جرابیں پہننے میں نہیں دیکھا. تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ پھر اس کے لیے تو مسے کا حکم ہی ختم ہو گیا. اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کچھ حدیثیں پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں, ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہیں, اور میں اس کو دوبارہ اس لیے نہیں پڑھنا چاہ رہی کہ الحمدللہ آپ لوگ پڑھ کے آئے ہوں گے اور آپ کے دلیل کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں جراب کے لفظ کو بھی دیکھ لیں, جو لوگ بات کہتے ہیں, میں اس کو پڑھ کے بلکہ سناتی ہوں, اگر آپ نے پوچھا تو اس کو اسی پیج 77 پہ ہے کہ لغت عرب کی معتبر کتاب قاموس کی جلد دیکھ پیج 46 پہ ہے, ہر وہ چیز جو پاؤں پر پہنی جائے وہ جورب ہے. تاج العروس میں ہے, جو چیز لفافے کی طرح پاؤں پر پہن لے وہ جورب ہے. علامہ عینی کہتے ہیں کہ جورب بٹے ہوئے اون سے بنائی جاتی ہے, یہ ویونگس ہوتے ہیں نا, ویوس, اون کی بنی ہوئی. اب آپ دیکھیں کہ جورب ہے نا, اب یہ چمڑے سے نہیں ہے, اسی ڈکشنری سے ہی یہ چیز بھی دکھی جا رہی ہے کہ اون سے بنائی جاتی, اور پاؤں میں ٹخنے سے اوپر تک پہنی جاتی ہے, यानी ये लाजमी है कि ये जो आपके एंकल है ना, ये टखने, ये छुपने चाहिए। अगर इससे नीचे की जुराब है ना, जैसे शायद आजकल लोग फैशन की भी पहनते हैं, उस पर मसला नहीं होगा। जुराब की ये शर्त है कि आपके टखने ढके, वरना तो आप देखें ना कि जूते जो हम पहनते हैं, जो बूट पहनते हैं, तो वो टखने खुलते हैं, तो उस पर आप नहीं कर सकते मसला। फिर इसके बाद आरिज़ा एक और किताब है कि जौरब वो चीज़ जो पाँव को ढांपने के लिए ऊन की बनाई जाती है। फिर इसी तरह उम्दा तो रियाया में है कि जुराबे रुई यानी सूत की होती हैं, सूत यानी कॉटन, और बालों की भी बनती हैं। इसी तरह गायतुल मकसूद में है कि जुराबे चमड़े की, सूफ की, सूफ ऊन को कहते हैं, और सूत की भी होती हैं। तो बस ये बात साबित हुई कि जौरब लिफाफे या लिबास को कहते हैं। वो लिबास चाहे खाल का बना हो यानी चमड़ा, चर्मी, चर्म स्किन को कहते हैं, सूती हो या ऊनी, हम इस पर मसा कर सकते हैं। ठीक है, आपका सवाल इसमें पूरा मिल गया। और कोई बात? चलिए, अगली चीज़ ये है पगड़ी के बारे में। अगला हुक्म जो हमें इस चैप्टर से पता चला कि अगर सही पगड़ी जो बहुत लंबी और उसमें कई बल्ब होते हैं, अगर किसी ने वो पहनी हो और उतारने में उसकी तकलीफ़ हो और उतार के दोबारा पहनना मुश्किल हो, तो पगड़ी पर मसा हो सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पगड़ी पर मसा करते थे। अब यहाँ साथ ही एक सवाल आ जाता है स्काफ का। बस लोग पगड़ी का सुनते ही कहते हैं कि जब पगड़ी पे मसा हो सकता है तो स्काफ पे भी हो सकता है, लेकिन स्काफ पे नहीं हो सकता। क्या करें? आप जैसे बहुत पिनअप करके पहनते हैं, तो पहली बात यह कि जहाँ भी आप इवन बाहर पब्लिक प्लेसेस पे भी जाएं, तो रेस्ट रूम्स तो अलग ही होते हैं ना, औरतों के अलग होते हैं, मर्दों के अलग होते हैं। आराम से स्काफ उतारिए, पूरा मसा करें, क्योंकि मसा करना एक सुन्नत है। फिर बाल अगर मुंह पे पूरा पानी नहीं जाता तो भी उससे मुश्किल हो सकती है। जितनी मुश्किल सहेंगे ना अल्लाह के किसी हुक्म को मानने में, उतना इंशाअल्लाह ताला अजर ज़्यादा होगा। तो स्काफ को क्यास नहीं कर सकते पगड़ी के ऊपर, क्योंकि वो पगड़ी एक और कैफियत का नाम है। वो आपने अगर असल पगड़ी देखी है, वो कई कई गज़ लंबी होती है, फिर उसको बल डाल के और कई किस्म से होती है। तो स्काफ के मसले को यानी हम इस पे क्यास नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर अगली चीज़ हमने इस बाब से सीखी कि वुज़ू के बग़ैर नमाज नहीं होती। फिर अगली चीज़ हमने सीखी कि अगर कोई वुज़ू के बग़ैर या वुज़ू टूटने के बावजूद भी नमाज़ पढ़ ले तो उसकी नमाज़ कबूल नहीं होगी। फिर अगली बात हमने सीखी कि जिस्म से किसी रतूबत के निकलने से वज़ू दोबारा करना लाजमी हो जाता है, गुसल की ज़रूरत नहीं होती। फिर अगला मसला है प्राइवेट पार्ट्स को छूने का, यानी अपनी या बच्चे की या किसी की भी साफ़ करते हुए अगर प्राइवेट पार्ट को हाथ लग जाए तो फिर वज़ू करना पड़ेगा। इसमें भी थोड़ा दो तीन इख्तलाफी बातें हमारे कल्चर में दिखती हैं। इन सारी चीज़ों का खुलासा क्या है कि बग़ैर कपड़े के नेकेडली अगर प्राइवेट पार्ट को हाथ लग जाता है तो वज़ू टूट जाता है, लेकिन अगर कपड़े के साथ हाथ ख़ारिश करते हुए या कपड़े पहनने में या किसी तरह लगता है तो फिर वज़ू नहीं टूटता। बाज़ माएँ पूछती हैं कि बच्चे को धुलाएंगे तो क्या हमारा वज़ू टूट जाएगा? तो उसका भी समझ लीजिए बात कि बच्चे को आपने खोला, अब बाज़ लोग सिंक पे धोते हैं, बाज़ जहाँ भी धोते हैं, अगर आपका बच्चे के उस गंदगी को लग गए हाथ तो नहीं वज़ू टूटेगा, लेकिन प्राइवेट पार्ट को लगेगा तो टूटता है। अगर आप समझते हैं कि आप इस तरह से पानी बहा सकती हैं और उसको पैम्पर चेंज करते कराते में आपका अपना हाथ जिस्म को उसके नहीं लगता, तो इंशाल्लाह ताला वज़ू के बग़ैर आपका वज़ू नहीं टूटेगा, लेकिन अगर जिस्म को हाथ लग जाता है तो फिर वज़ू टूट जाता है। और यही हुक्म अपने या किसी और के को हाथ लगाने में भी है। फिर उसके बाद अगली चीज़ पता चली कि जो शख्स गहरी नींद सो जाता है उसको दोबारा वज़ू करना पड़ेगा, यानी गहरी नींद वज़ू को तोड़ देती है। गहरी नींद क्या होती है कि लेटे और बेहोश हो गए, यानी होश ख़त्म हुई, चाहे 2 मिनट के लिए हुए, लेकिन बैठे हुए नींद आए, जैसे माशाल्लाह यहाँ भी आती होगी आप में से कुछ को, एकदम ऊँग आ गई, झूलने लग गए, उससे नहीं टूटता। ये अल्लाह ताला की एक रहमत है, क्योंकि जब हम लेटते हैं ना तो हमारे जिस्म के बंद खुल जाते हैं और जिस्म से हवा खारिज होती है। असल मसला भी ये नींद नहीं है, असल मसला है हवा का खारिज होना। नींद की हालत में बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है, होश नहीं रहती, उसको नहीं पता कि मेरे जिस्म से हवा निकली है कि नहीं। और जब हम लेटते हैं ना तो अल्लाह ने हमारे जिस्म को इस तरह का बनाया है कि उसके सारे बंद खुल जाते हैं, और आप देखें कि नींद की हालत या लेटने की हालत में जिस्म से ज़्यादा गैस पास होती है। तो इसलिए कहा कि जब लेटेगा कोई तो उसकी गैस पास हो सकती है, लेकिन बैठने की सूरत में वो कैफियत नहीं होती। और सहाबे कराम नमाज के इंतज़ार में बैठे बैठे ऊँगते भी थे कभी, लेकिन फिर वज़ू के बग़ैर वैसे ही नमाज़ पढ़ते थे, तो बैठने से नहीं होता। फिर अगली बात है, हवा खारिज होने से वज़ू टूट जाता है, उसकी क्या दलील है? बाज़ दफ़ा शैतान वहम डालता रहता है कि मेरी खारिज हुई है कि नहीं हुई, तो उसकी दो दलीलें अल्लाह के नबी ने बताई, या तो बदबू सूंघ ले या फिर आवाज़ आ जाए। ये दो चीज़ें हैं जिससे आप समझेंगे कि हवा खारिज हुई है। सिर्फ वहम नहीं करना चाहिए, बाज़ लोगों को वहम की इतनी बीमारी होती है कि वो ख़ुद भी हर वक्त परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। फिर इसके बाद अगला हुक, अगले जो मसले हैं जिसमें हमें देखना है, क्या कह आने से वॉमिटिंग से वज़ू टूट जाता है, या फिर खून निकलने से जिस्म से, या नकसीर फूटने से वज़ू टूट जाता है कि नहीं। तो फिर इसके लिए पहली बात है कि खून जारी, जिस्म से खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता। इसकी दलील है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो जब नमाज़ पढ़ रहे थे तो उसी दौरान उनको ज़ख्मी किया गया था, और उसके बावजूद कि उनका खून निकल रहा था, उन्होंने नमाज़ नहीं तोड़ी थी। अगर वज़ू टूट जाता तो यकीनन वो नमाज़ छोड़ देते। ठीक है, फिर दूसरी बात ये है इसमें कि क्या कह आने से या वॉमिटिंग की वजह से वज़ू टूट जाता है कि नहीं, तो ये मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ ताकि शरह सदर हो जाए। कह या नकसीर आने से वज़ू टूट जाने वाली रिवायत को जो बुलुगुल मराम और इब्ने माजा में है, इमाम अहमद और दीगर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ कहा है, बल्कि इस सिलसिले की तमाम रिवायात सख्त ज़ईफ़ हैं। लिहाजा बरात असलिया पर अमल करते हुए ये कहा जा सकता है कि खून निकलने से वज़ू फासिद नहीं होता। इसकी तायद उस वाक़े से भी होती है जो सहाबी ग़ज़वा ज़ातुर रिका में उनके साथ पेश आया कि रात को नमाज़ पढ़ रहे थे, किसी दुश्मन ने इन पर 3 तीर चलाए, वो ज़ख्मी हुए, खून बहने लगा, फिर भी नमाज़ पढ़ते रहे। तो ये नहीं हो सकता था कि, यानी उनको ये मसला नहीं मालूम था, तो बात यह है कि वज़ू नहीं टूटता इंशाअल्लाह ताला। फिर अगली चीज़ हमने देखी कि नमाज के दौरान अगर वज़ू टूट जाए तो क्या किया जाए, उसका सुन्नत तरीका क्या है कि नाक पर हाथ रखकर, यानी जैसे टिश्यू है या कुछ है, आप सफ़ में खड़े थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, इवन पढ़ा रहे थे, इंसान होने के नाते किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, अब इमाम साहब हैं, अब उनका वज़ू टूट गया है। बाज़ दफ़ा तो हम ऐसी चीज़ों पर शर्म की वजह से कि नहीं लोगों को पता चलेगा, लोग क्या कहेंगे, और दीन के ऊपर हर्फ ले आते हैं। नहीं, जो इस वजह से कि वज़ू टूट गया और फिर भी नमाज़ ना छोड़े कि लोग देख लेंगे, तो उसने बहुत बड़ा शिर्क किया। वो लोगों से डर गया लेकिन अल्लाह ताला से नहीं डरा। तो लेकिन किया क्या जाएगा कि अगर नमाज के दौरान वज़ू टूट जाए तो नाक पर हाथ रखकर पीछे पलट जाए, यानी ये एक ऐसा सिंबल है कि बाकी सबको भी जब इल्म होगा तो पता चल जाएगा कि इसका वज़ू टूटा है। बाज़ दफ़ा कोई वज़ू टूटता है, अब करे क्या? आम हालात में तो इंसान अकेला है, बस सलाम फेरें और जाके वज़ू करें और दोबारा नमाज़ पढ़ें आके, ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जमात में अब लोग परेशान होने लगते हैं, ये क्यों निकल गए, पता नहीं वापस आएंगे नहीं, तो ये जो नाक पे हाथ रखने वाली बात है वो क्यों है कि इससे पता चल जाएगा लोगों को कि इसका वज़ू टूटा है, वो निकलेंगे और दूसरे लोग कदम बढ़ा के उसकी सफ़ की जो जगह खाली हुई थी उसको पूरा कर लेंगे। इसके बाद तयम्मुम की बात जो है, तयम्मुम कहते हैं कि पानी जहाँ ना मिले या पानी के मिलने से वज़ू के, यानी पानी के इस्तेमाल से बीमारी के बढ़ने का ख़तरा हो, तो फिर साफ मिट्टी से वज़ू तयम्मुम कर लिया जाए, ये जायज़ है। इसकी जो चीज़ हमने देखी वो क्या थी कि सफ़र की हालत में जब पानी ना हो तब भी तयम्मुम किया जा सकता है, और पानी इतना दूर है कि वहाँ पहुँचने तक नमाज कज़ा हो जाएगी, या ऐसा मरीज़ है कि जिसके पानी के इस्तेमाल की वजह से बीमारी के बढ़ने का खौफ होगा, फिर इसी तरह की कैफियत है उसमें तयम्मुम होगा। तयम्मुम किया कैसे जाएगा? उसका बहुत ही आसान तरीका है कि पानी को किसी भी जगह, खाक है, मिट्टी है, जैसे फर्नीचर पे धूल हो सकती है, सफ़र में तो गाड़ी का जो शीशा है उसके ऊपर थोड़ी सी धूल हो सकती है, कहीं से भी खुश्क धूल कुछ भी हो, हल्का से एक हाथ फेर के, और बल्कि फूक भी सकते हैं, यदि अगर ज़्यादा मिट्टी है तो उसको, कोई मिट्टी को मतलब मुँह पे मलना मकसद नहीं है, या उसका ये नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में डाला जाए, इस तरह से किया जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा कि अपने हाथों पे यूं फेरेगा, मुँह पे हाथ फेरी और हाथों को एक दफ़ा यूं, बस ये तयम्मुम हो गया। ज़रबे वाहिद, दोबारा बोलती हूँ, मिट्टी है उस पर हाथ डाले, फूक ले, और उसके बाद इसको एक दफ़ा मुंह पे कर लें, अब इसी को बस एक दफ़ा यूं कर लें तो भी हो गया, और आप चाहें तो एक दफ़ा ये करके मुंह पे फेरा, फिर दोबारा भी मिट्टी पे हाथ डाल के तो यूं कर लें। बस इतनी सी चीज़ से वज़ू हो जाता है। इसमें पूरा करना और वज़ू वाले एक्शंस करने इसकी ज़रूरत नहीं। बड़ी अजीब सी ये खूबसूरत सी अल्लाह ताला की दीवी रुख्सत है। मुझे ऐसे लगता है कि ये सिर्फ इंसान के लिए साइकोलॉजिकली एक फीलिंग देने वाली कैफियत है कि तुम अब पाक हो गए हो। अल्लाह ताला बंदे को मुश्किल में नहीं डालता कि तुम जो भी है मुश्किल में हो आसानी में हो, और तुम्हें जो है वो नमाज़ पढ़नी है तो तुम्हें वज़ू करना ही पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा। फिर अगली चीज़ तयम्मुम के बारे में बड़ी खूबसूरत है कि इंसान को वज़ू की तलब हो या गुसल की तलब हो, दोनों में फ़र्क है ना। रेस्टरूम से हो के आया तब उसके बाद उसको वज़ू करना है, लेकिन अगर पीछे जो हमने पढ़ ली गुसल की हालतें जिसमें गुसल वाजिब हो जाता है, यानी कोई ताल्लुक़ कायम हुआ, जनाबत की कैफियत हुई, दोनों सूरतों में बस इतना ही करना काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। एक सहाबी थे, जब उन्होंने सुना तयम्मुम का मसला तो बाहर गए, वो सफ़र पे थे, जुमजुम्बी हो गए तो वहाँ मट्टी पे कहते मैं इस तरह लोटनियाँ लेने लगा जैसे गधा ज़मीन पे लोटनियाँ लेता है, और पूरे सर पे मुंह पे मट्टी डाल के आ गए। कहा अल्लाह के ये क्या किया? कहा अल्लाह के नबी मुझे गुसल करना था तो मैंने उसकी जगह ये किया। तो आपने कहा कि तुम्हें बस इतना ही काफ़ी था। यानी इतने भोले लोग होते थे और इतने सीधे साधे थे, और आप देखिए फिर अपनी वो बातें आके बता भी देते थे कि भाई इस तरह मैंने किया है। तो लिहाजा ये है तयम्मुम। तयम्मुम का मानी क्या होता है? कसद करना, इरादा करना। और इरादा करना मुराद है कि बस आपने वुजू का इरादा कर लिया, और अल्लाह ताला बंदे को मुश्किल में नहीं डालना चाहता, बस उसके इरादे से ही वो काम हो जाता है। फिर मट्टी ना मिले तो क्या किया जाए? बाज़ लोग इसके लिए भी बहुत तरद्दुद करते हैं, रेत भी ली जा सकती है। दुनिया के कुछ हिस्सों में मट्टी है ही नहीं, वहाँ है ही रेत है, कहीं भुरभुरी है, कंकर है, कुछ कोई चीज़ ले लीजिए जो वहाँ मौजूद है। अब अलग से कोई इख्तमाम करना और मतलब इसके लिए बहुत परेशान रहना, तो मैं सोचती हूँ कि इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान रहने से ज़्यादा हमें दीन के स्पिरिचुअल इफ़ेक्ट और उसके जो रूहानियत है उसके बारे में फ़िक्र रखनी चाहिए। नमाज़ पढ़ी है उसमें तवज्जो मेरी थी कि नहीं, नमाज की हालत में कोई मैंने ऐसा काम तो नहीं कर दिया, बजाय इसके कि हम इस तरह की चीज़ें करते पढ़ें कि जिससे हम नमाज़ पढ़ के भी अपने आप को मुश्किल में डाल दें। तो ये था वो हमारा चैप्टर गुसल वुजू और तयम्मुम वाला। कोई आपके जहन में सवाल है इस बारे में तो पूछ सकते हैं जी। कोई सवाल जहन में तो नहीं आपके इस टॉपिक के बारे में? क्लियर है सब कुछ? ये अगला टॉपिक शुरू करना था लेकिन इधर घड़ी पे भी है, और खाना रबी का रबी लिज्जत यम्मा यसिफोन।